नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त नीलम। मेरी उम्र 24 साल है, ब्रा का साइज़ 32, चश्मे और ब्रा का नंबर हमेशा बढ़ता ही रहता है। मेरी ब्रा का नंबर बहुत बढ़ रहा है, मेरा रंग दूध की तरह गोरा है। मेरी पिछली कहानी में आपने पढ़ा कि कैसे मेरे यार ने मुझे गर्म करके चोद दिया। आज की कहानी जीजा साली की है और ये उस समय की बात है जब मेरी दीदी गर्भवती थी, उनको बच्चा होने वाला था। उस समय जीजू ने दीदी से कहा कि कुछ दिन के लिए नीलम को बुला लो, काम में मदद हो जाएगी और वैसे भी तुमको अब घर का काम करने से डॉक्टर ने मना ही कर दिया है। इस पर दीदी ने अगले दिन मम्मी को फ़ोन किया और मुझे भेजने को कहा। फिर भैया और मम्मी मुझे लेकर दीदी के घर छोड़ने आ गई। उस दिन जब मैं घर पहुंची तो शाम को जीजू ऑफिस से आए और देखते ही बोले, आ गई साली साहिबा, कैसी हो? मैंने नमस्ते में सर हिलाया, मैंने कहा ठीक हूँ। जीजू मेरी चूचियों को बार बार देख रहे थे, ये मैंने नोटिस कर ही लिया था। तब सर्दियों के दिन थे और ठंड बहुत ज़्यादा थी। रात को सोने की तैयारी होने लगी। एक कमरे में दीदी, जीजू और मैं सोई और दूसरे में मम्मी और भैया। अगले दिन मम्मी और भैया दीदी से मिलकर चले गए और मैं दीदी के साथ ही रह गई। जीजू सुबह चले जाते थे और शाम को आते थे और अब जीजू मुझसे बहुत बातें करते थे। दोस्तों, पिछली कहानियों में आपने पढ़ा होगा कि जीजू मुझसे कैसे मजाक करते थे। मैंने जीजू से कहा, जीजू आपने ऐसा क्या किया जो दीदी की ऐसी हालत हो गई? तो जीजू बोले, साली जी तुम कहो तो तुम्हें भी ऐसा कर दें। ये बोलकर वो अपने लिंग को खुजलाने लगे। मुझे बड़ी शर्म आई। जब मैं किचन में काम करती तो जीजू पीछे से पकड़ लेते। मैं उनसे कहती, हट जाओ, दीदी आ जाएंगी। तो वो कहते, नहीं आएगी, तुम बस काम करती रहा करो ना। दोस्तों, दीदी के घर में नीचे दीदी की सास और देवर रहते थे। दीदी की सास अधिकतर नीचे ही रहती थी क्योंकि उनके घुटनों में दर्द रहता था। लेकिन अगर मैं सामने पड़ जाती या आसपास कोई होता तो दीदी के देवर मुझसे बात करने की कोशिश करते। दीदी के घर में किराए का कमरा लेकर रहने वाले लड़के, आस पड़ोस के और रिश्तेदार के बहुत सारे लड़के मेरी तरफ अट्रैक्टेड थे, मुझे चोदने की जुगाड़ में लगे रहते थे। लेकिन दीदी को ये सब पसंद नहीं था। मेरी दीदी कहती है कि आजकल तो लड़के बस जूत के प्यासे होते हैं, हर लड़का यही मज़े लेना चाहता है। एक रात हम खाना खाकर लेटे थे कि अचानक 11 बजे दीदी के पेट में दर्द शुरू हो गया। उनकी हालत बिगड़ने लगी तो हम अस्पताल ले गए। दीदी के साथ उनकी सास भी गई। मैं और दीदी के देवर घर में अकेले रह गए थे। मुझे बड़ा डर लग रहा था कि कहीं दीदी का देवर ऊपर आकर मुझे चोद ना दे। पूरी रात मैं ठीक से सो भी नहीं पाई, लेकिन शुक्र है ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुबह जीजू घर आए और बोले, साली साहिबा मौसी बन गई हो तुम, बेटा हुआ है। हम दोनों काफ़ी खुश थे। ये सब कहते कहते जीजू ने मेरे गले से लगा लिया और फिर मेरे स्तनों को दबाने लगे और ये कहकर मेरी कमीज उतारने लगे। मैंने बहुत मना किया लेकिन जीजू माने ही नहीं। वो बस चुपचाप आगे बढ़े जा रहे थे और मुझे किस करे जा रहे थे। फिर उन्होंने मेरी कमीज को निकाल दिया और मेरी चूचियों को ब्रा के ऊपर से दबाने लगी। मैं कसमसाने सी लगी, मेरे स्तन सख्त होने लगे और निप्पल तन गए। मैं छेड़ने के लिए बोली तो जीजू बोले, साली साहिबा मेरा चूत लेने का बहुत मन कर रहा है, पिछले कई महीनों से चूत मिली नहीं है, तुम्हारी दीदी ने हाथ ही नहीं लगाने दिया, अब तुम तो मना मत करो कम से कम। मैंने कहा, जीजू नहीं प्लीज़ छोड़ो, दीदी को पता चल जाएगा। इतना कहकर मैंने अपने आप को छुड़ाया और नहाने के लिए भाग गई। तभी जीजू बाथरूम की तरफ आए और दरवाज़ा खोलने के लिए कहने लगे, लेकिन मैंने नहीं खोला। मैं नहाकर बाहर आई तो जीजू मुझे देखकर हंस रहे थे। तभी दीदी का फ़ोन आ गया। वो कहने लगे कि नर्स ने बाज़ार से कुछ दवा लाने को कहा है। जीजू बोले, नीलम जल्दी से खाना बना दो, दीदी के लिए खाना भी लेकर जाना है। फिर मैंने खाना बनाया, जीजू ने खाना खाया और दीदी के लिए भी खाना ले गए। मैं सो गई। शाम को जीजू अस्पताल से घर आए, बताया कि अभी नर्स ने 2-3 दिन छुट्टी ना लेने को कहा है क्योंकि दीदी को बड़ी कमज़ोरी हो गई है, इसलिए 2-3 दिन के बाद ही छुट्टी मिलेगी। ये कहकर जीजू बोले कि चाय बना दो। मैंने चाय बनाई और हम दोनों चाय पीने लगे, बातें भी करने लगे। बातों बातों में जीजू ने मुझे बताया कि कल तुम्हारी दीदी की शादी को 1 साल हो जाएगा, तभी मुझे याद आया, अरे हाँ जीजू, कल तो आपकी शादी की सालगिरह है, मैं तो भूल ही गई थी। लेकिन जीजू थोड़ा उदास हो गए क्योंकि दीदी अस्पताल में थी। मैं बोली, कोई बात नहीं जीजू, कल दीदी से मिलने चल पड़ेंगे। अगले दिन मैं जीजू के साथ दीदी से मिलने गई तो दीदी मुस्कुरा रही थी। जीजू बोले, जान तुम्हें याद है आज हमारी शादी की सालगिरह है। हैप्पी एनिवर्सरी कहते हुए दीदी के माथे पर किस किया तो जीजू कहने लगे, अगर तुम घर होती तो पार्टी करती और खूब इंजॉय करती। दीदी मजाक में बोली, मैं घर पर नहीं हूँ तो क्या हुआ, आधी घरवाली तो घर पर है ना। पर कोई बात नहीं, आऊँगी तब पार्टी करेंगे। जीजू अपने बेटे को गोदी में खिलाने लगे और बोले, देखो नीलम, तुम्हारी दीदी ने शादी की सालगिरह पर मुझे कितना बड़ा गिफ्ट दिया है। साली जी, तुम क्या गिफ्ट दोगी मुझे, ये कहते हुए वो हंसने लगे। मैं जीजू के इरादे तो समझ गई थी और उनका इशारा क्या है। शाम को मैं और जीजू घर आ गए। मैं रसोई की तरह बड़ी तो जीजू ने फिर से मुझे पीछे से पकड़ लिया, मुझे गर्दन पर किस करते हुए मेरी चूचियों को दबाने लगे। मेरी आँख निकल गई। मैंने फिर उन्हें हटाया तो उन्होंने कहा, नीलम आज मत रोको। इतना कहकर उन्होंने मुझे पलटा और गले से लगाकर चिपका लिया। हम दोनों एक दो मिनट तक एक दूसरे से चिपके खड़े रहे और फिर वो मेरे होठों को चूसने लगे। करीब 5 मिनट बाद वे अलग हुए। मेरी आंखों में देखते हुए बोले, जान आज मेरी शादी की पहली सालगिरह है, तुम्हारी दीदी नहीं तो क्या हुआ, तुम तो हो, आओ इसे यादगार बनाते हैं। मैंने शर्मा कर सिर नीचे कर लिया। जल्दी से खाना बनाया, हम दोनों ने खाना खाया और पैक करके जीजू को दीदी के लिए दे दिया। जीजू खाना देकर वापस आए तो उनके साथ एक आदमी आया था। जीजू उसको कमरा सजाने के लिए साथ लेकर आए थे। वह हमारे लिए कमरा भी सजाने लगा। उस रात घर पर कोई नहीं था। दीदी की सास और देवर अस्पताल में ही रुके हुए थे। जीजू बोले, अब तुम भी तैयार हो जाओ। उन्होंने मुझे दीदी की शादी का लहंगा और जेवर वगैरह सब दिए। जब तक मैं तैयार होकर आई, कमरा पूरा सज चुका था। जीजू पूरी सुहागरात के मूड में थे। मुझे गोदी में उठाकर बिस्तर पर पटक दिया। मुझे बैठाकर जीजू खुद भी तैयार होने चले गए और तैयार होकर दूल्हा बनकर आ गए। आए और मेरा घूंघट उठाकर मेरी आंखों में आंखें डालकर देखने लगे। मैं शर्माने लगी और जीजू ने कस कर लिपट गई। कुछ देर बाद वे अलग हुए और मुझे घुमाकर पीछे से पीठ, कान, गर्दन, कान की लो पर किस करने लगे। मेरे ब्लाउज की डोरियों को खींचने लगे। फिर जीजू ने मेरा ब्लाउज उतार दिया। अब मैं ब्रा में थी। जीजू एक एक करके मेरे गहने उतारने लगे और किस करने लगे। मैं उत्तेजित हो रही थी, कुछ कुछ होने लगा था मुझे। फिर मैं फ्रेंच और अंडरवेयर बनियान में आ गई और जीजू ने भी सारे कपड़े उतार दिए। अब जीजू ने मेरे लहंगे का नाड़ा पकड़कर खींचा और हम दोनों एक दूसरे को देखने लगे। फिर उन्होंने मेरी ब्रा का हुक खोल दिया। कंधे पर से ब्रा की स्ट्रिप उतारते हुए ब्रा निकाल कर फेंक दी। फिर उन्होंने मुझे लिटा दिया और लेटकर मेरी चूचियों को चूसने लगे। 15 मिनट तक मेरे चूचियों को सक करने के बाद मेरे स्तनों से खेलने लगे। मेरे जीजू बहुत रोमांटिक स्वभाव के इंसान हैं, मैं जान चुकी थी। अब जीजू उठे और मेरी पेंटी की इलास्टिक पकड़कर उतारने लगे तो मैंने कहा नहीं, लेकिन अब कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने मुझे पूरी नंगी कर दिया और मुझे देखने लगे। मैंने अपने हाथों से अपनी चूत को छुपा लिया। जीजू ने मेरे हाथों को पकड़कर पीछे की तरफ खींच दिया और अपने नंगे बदन से मेरे नंगे बदन को चिपका लिया। फिर मुझे होठों पर किस करने लगे। करीब 10 मिनट तक हम एक दूसरे की जीभ चूसते रहे। फिर जीजू ने मुझे उठाया और अपना लिंग चुसाने के लिए मेरे होठों के आगे कर दिया। मैंने ना में सिर हिलाया, लेकिन जीजू ने मेरे बाल पकड़ लिए और बोले, अच्छा किस तो कर दो। मैं लिंग के आगे वाले भाग पर किस करने लगी। धीरे धीरे जीभ को फिराने लगी। जीजू ने हल्के हल्के धक्कों के साथ अपना लौड़ा मेरे मुंह में डालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मैं उसे अंदर बाहर करने लगी। इस तरीके से मैं उसे लॉलीपॉप की तरह चूसने लगी। करीब 10 मिनट तक लिंग चूसवाने के बाद जीजू ने अपना सारा माल मेरे मुंह में छोड़ दिया, जो मुझे बहुत ख़राब लगा। फिर बोले, साली जी पी लो इसे, इसमें सारे विटामिन होते हैं। फिर जीजू ने मुझे उठाया और 6-9 वाली पोजीशन में कर दिया। अब जीजू ने अपनी जीभ मेरी चूत में डाल दी, जिससे मुझे हल्की हल्की गुदगुदी सी होने लगी। दूसरी तरफ जीजू का लिंग डंडे की तरह सीधा खड़ा था, जो मेरे होठों से टकरा रहा था। उन्होंने अपना लिंग फिर से मेरे मुंह में डाल दिया और चुसाने लगे। दोस्तों, आप कल्पना कर सकते हो कि उस समय कैसी स्थिति रही होगी। मेरे मुंह से बस ऊँ ऊँ की आवाज़ें आ रही थी। बीच बीच में जीजू बोलते, साली जी तुम्हारी चूत बड़ी अच्छी है, साली साहिब आज तो खा जाऊंगा कसम से। कभी चूत पर किस करते, कभी हल्के से काटते। इस तरह लगभग 20 मिनट तक जीजू ने मेरे साथ ये खेल खेला, जिसकी वजह से मेरी उत्तेजना बढ़ चुकी थी और मुझे पेशाब आने लगा। फिर वह उससे अलग हुए और बोले, कसम से तुम बड़ी मस्त हो नीलम। मैंने कहा, मुझे पेशाब लगी है। उन्होंने मुझे गोदी में उठाया और बाथरूम की तरफ ले गए और बोले, करो। मैंने कहा, मुझे शर्म आ रही है, आप जाओ। उन्होंने कहा, मेरे सामने ही करो। और दूसरी तरफ जीजू अपना गधे जैसा मोटा लंग निकाल कर पेशाब करने लगे। फिर उन्होंने धोया और बोले, अच्छा साली जी एक बात बताओ, ये लड़कियों की चूत से पेशाब करते इसमें सीटी जैसी आवाज़ क्यों लगती है। हम दोनों हंसने लगे। मैंने कहा, पता नहीं। जीजू बोले, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आज मैं यही देखूंगा। तुम्हारी दीदी तो बड़ी तेज़ आवाज़ करती है। तभी मेरी पेशाब की धार निकल पड़ी और फिर से वो आवाज़ आई। फिर जीजू ने मुझे उठाया और मेरी चूत को धोने लगे। उसे धोकर वो मुझे फिर से कमरे में ले आए। जीजू ने मुझे लिटा दिया और मेरे ऊपर आकर देखने लगे। हाय, मुझे बड़ी शर्म आई। जीजू बोले, साली तो आधी घरवाली होती है, शर्माओ नहीं। फिर उन्होंने अपना लिंग चूत पर लगा दिया, लेकिन इतने में ही जीजू ने अपने होठ मेरे होठों पर भी रख दिए थे, ताकि आवाज़ ना निकल सके। मैं संभल पाती इससे पहले ही जीजू ने तेज़ी से दूसरा धक्का लगाया। दर्द के मारे मैं तड़प उठी और रुआसी हो गई। मेरी आँखों से आंसू निकलने लगे, मैं छटपटाने लगी। जीजू ने बहुत तेज तेज धक्के मारने शुरू कर दिए, 8-10 धक्के लगाए। फिर रुके तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मैं बोली, प्लीज़ जीजू अब छोड़ दो, मुझे नहीं करना कुछ भी। तो बोले, साली साहिबा अभी तो चुदाई शुरू हुई है, तुम अभी से हार मान गई। मैं उठने लगी, तभी जीजू ने हाथ पकड़ कर खींच लिया। इस बार जीजू रुके धक्के पर धक्के लगा रहे थे, बिना रुके। उनका लिंग धीरे धीरे मेरी बच्चेदानी को छूने लगा था और मेरी सिसकारियां निकलने लगी थी। फिर जीजू ने मुझे उठाया और घोड़ी बना दिया, लेकिन उनका लंड अभी भी झड़ा नहीं था। लगभग 20 मिनट तक मुझे घोड़ी बनाकर चोदने के बाद जीजू का झड़ने वाला था, तो उन्होंने अपनी स्पीड और तेज कर दी और हाँफते हाँफते अपना गर्मा गर्म माल छोड़ दिया, बहुत गाढ़ा, क्योंकि जीजू को 8 महीने से चूत ही नहीं मिली थी और ना ही जीजू हस्त मैथुन करते थे। वीर्य की पिचकारी लगातार निकल रही थी। फिर अलग हुए और माल साफ करके मुझे बाहों में लेकर प्यार करने लगे। ऐसा करते करते पता नहीं कब नींद आ गई और हम दोनों सो गए। सुबह उठे और मुझे फिर से रगड़ने लगे। दोस्तों, 2 बार जमकर सुबह सुबह जीजू ने मेरी चुदाई कर दी। दोस्तों, सुबह की चुदाई में कितना जोश होता है ये तो आपको पता ही होगा। कसम से उस रात 3 बार चुदी मैं। सुबह उठे तो बहुत खुश थे और उनकी 8 महीनों की तमन्ना भी पूरी हो गई थी। दोस्तों, इस समय जीजू को चूत मिलना मतलब किसी प्यासे को जैसे पानी मिल गया हो। मुझसे बोले, चलो आज साथ ही नहाएंगे। जीजू ने शावर चालू किया, हम दोनों नंगे शावर के नीचे नहा रहे थे। मुझे शर्म तो आ रही थी, लेकिन जीजू फिर से मुझे कह देते कि अरे तुम तो मेरी जान हो। हम दोनों साथ नहाने का पूरा मज़ा ले रहे थे। ऊपर से पानी की बौछार गिर रही थी और जीजू मेरे पीछे आने लगे। पीछे से धीरे धीरे जीजू का लिंग बच्चेदानी पर लग रहा था, जिसे मैं ज़्यादा देर तक रोक ना सकी और मुझे वो फिर से बाथरूम में ही चोदने लगे। मैं झड़ गई। फिर उन्होंने अपना लिंग चूत से निकाला और मेरे मुंह में डालकर चुसाने लगी। मैंने ना मैं सिर हिलाया, लेकिन जीजू कहाँ मानने वाले थे। ऐसे ही वो मुझे मेरे मुंह में अपना लंट डाल डाल कर निकालने लगे। 5 मिनट मुझे चुसाने के बाद मेरे मुंह में ही झड़ गए। मैंने तुरंत कुल्ला किया और जीजू अपना लिंग धोने लगे। हम दोनों नहाकर तैयार हुए और नाश्ता करके दीदी से मिलने अस्पताल पहुँचे। 5 दिन बाद दीदी की छुट्टी हुई। उन 5 दिनों में जीजू ने मुझे दिन रात चोदा। दोस्तों, मैं वहाँ 1 महीने रही और 1 महीने में पता नहीं जीजू ने मुझे कितनी बार चोदा होगा। फिर मम्मी ने दीदी को फ़ोन करके बोला कि नीलम को घर भेज दो। एक दिन दीदी कहने लगी, सुनो जी, नीलम इतने दिनों से रुकी है, कुछ शॉपिंग तो करा दो। ये सुनकर जीजू मुझे बाज़ार ले गए और अच्छा सा ड्रेस दिलवाया, अपनी पसंद की ब्रा पैंटी। घर आकर मैंने सूट कुर्ती दीदी को दिखाया, जो उन्हें भी बहुत अच्छा लगा। जब जीजू फ़ोन पर बात करते हैं और बोलते हैं, साली जी यहाँ कब आ रही हो, यहाँ आ जाओ, तुम्हारी कसरत करूँगा, तो मैं मन ही मन शर्मा जाती हूँ। दोस्तों, तो कैसी लगी आपको जीजा साली की ये प्यार भरी कहानी, मुझे मेल करके ज़रूर बताइएगा।